ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा की यादों में सब मस्त थे। ये नुमा शाम का समय विशेष विश्व सेवा के प्रति शुभ वाइब्रेशन देने का समय है और हम सभी विशेष नुमा शाम के समय सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को ये एक ड्यूटी दी हुई है और जिस ड्यूटी को हम सभी बड़े प्यार से निभाते हैं, जिसमें हमारी डबल प्राप्ति होती है। विशेष हम योग करते हैं तो हमारी योग की शक्ति जमा होती है और साथ साथ जब विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं तो सेवा का खाता जमा होता है। प्यारे बाबा ने हम सभी को जो कार्य दिए हुए हैं उन कार्यों के अंदर एक ही प्राप्ति नहीं है लेकिन अनेक गुना प्राप्ति है। आज मुझे इस क्लास के लिए टॉपिक दिया गया है, अपने जीवन को दुआओं से कैसे भरपूर रखना है। आज हम सबने प्यारे बाबा की मुरली भी सुनी थी और बाबा ने मुरली के अंदर बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को याद किया था, योगी और सेवाधारी। और योगी सेवाधारी के साथ साथ धारणा मूरत आत्माएं भी प्रैक्टिकल जीवन वाली आत्माओं को ही बाबा ने विशेष याद किया। बाबा ने हम सबको हमारी ड्यूटी भी याद कराई थी कि बच्चे तुमको ये कलयुगी छप्पर को क्या करना है, उठाना है। और हम सभी बाबा के बच्चे उस कार्य में लगे हुए हैं। तो जब सेवा के कार्य में लगते हैं तो सेवा से हम सबको क्या मिलता है वो तो हम सभी जानते हैं। कहते हैं जो करे सेवा वो खाए मेवा। हाँ, और मेवा खाने वाले सदैव कैसे होते हैं, खुश खुशहाल होते हैं। तो जीवन को खुशमय बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे जीवन में दुआओं की बड़ी आवश्यकता है ना। भक्ति में भी लोग दुआएं मांगते हैं, भगवान से भी मांगते हैं, मनुष्य आत्माओं से भी मांगते हैं, बड़ों से भी मांगते हैं, छोटों से भी मांगते हैं। हर एक क्या चाहता है, हमको दुआ दो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद और दुआएं एक ऐसा विमान है जो हमारे इस जीवन को सहज ही उड़ा करके ले जाता है। एक होता है चलना और एक होता है उड़ना। तो चलने में मेहनत होती है, है ना? जब चलते हैं तो मेहनत लगती है, और जब उड़ते हैं तो उसमें मेहनत नहीं लगती है। चलने में, कहीं भी पहुंचने में टाइम लगता है, और उड़ने में क्या होता है, टाइम कम लगता है, है? तो ऐसे ही बाबा ने भी हम सभी बच्चों को कहा कि बच्चे, ये संगम युग है, और संगम युग का जो समय है वो बहुत कम समय है। बाबा ने तो संगम युग का जो समय दिया वो भले 100 वर्ष दिया, लेकिन 100 वर्ष के अंदर, संगम युग का समय 100 वर्ष, लेकिन मुझ आत्मा को उसमें से कितना मिला है? तो जो मुझे समय मिला है उस समय में ही मुझे अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अब हमारे पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो कितनी तेज होनी चाहिए, है ना? तो उसके लिए पुरुषार्थ में जब दुआओं का विमान हम सबको मिल जाता है तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, है ना? वैसे भी कहते हैं दुआएं हल्का कर देती हैं, और बददुआ भारी कर देती है। कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम आता है या कुछ समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई ऊंचाई नीचाई आती है, तो क्या कहते हैं, किसी की मेरे को बददुआ लग गई है ना? और अगर जीवन अच्छी चलती रहती है, खुशनुमा चलती रहती है, कोई पेपर नहीं आते हैं, सहज रीति से चल रहे हैं, तो क्या है, कहते हैं दुआओं में चल रहे हैं। अब दुआएं उड़ाती हैं और बददुआएं भारी कर देती हैं। तो हम सबको अपने जीवन को एकदम स्मूथ बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए हमें संगम पर दुआओं की आवश्यकता है। एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई थी तो बाबा ने कहा था, दुआओं के ऊपर चलाई थी, बाबा ने कहा था, बच्चे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन दुआएं लो और दुआएं दो, यही काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। अब दुआएं देनी भी है तो दुआएं लेनी भी है, दोनों काम करना है। अभी हम सभी लेना तो चाहते हैं लेकिन देने के लिए तैयार होते हैं, है? तो दोनों साथ में करना है। जब दोनों साथ में ही करेंगे तब ही दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं से हम अपने इस संगम युगी जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं। बाबा ने हम सभी को सहज ज्ञान दिया, सहज योग सिखाया, तो वो सहज कैसे बने? संगम युग की हमको दो प्राप्ति है, एक तो संबंध की प्राप्ति है, दूसरा हमको संपत्ति की प्राप्ति। संबंध और संपत्ति, संबंध है भगवान से और संपत्ति है भगवान से हमें अनेक प्रकार के खजाने प्राप्त हुए हैं, जिन खजानों के आधार से हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें दुआएं बहुत आवश्यक है। अब दुआओं को हम कैसे लें? दुआओं को लेने के लिए, क्योंकि दुआएं कैसे मिलेंगी? दुआएं कोई मांगने की चीज नहीं होती है, आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। हम कहें हमको आशीर्वाद दो, जैसे आजकल भक्ति के अंदर भी क्या था, एक रस्म रिवाज थी, बड़ों के आगे जाएंगे, कहेंगे आशीर्वाद दो, दुआएं दो, मंदिर में भगवान के आगे जाएंगे, कहेंगे हमको दुआएं दो, आशीर्वाद दो। तो सिर्फ मांगने से दुआएं नहीं मिलती है, दुआएं जो दिल से मिलती हैं, नेचुरल मिलती हैं, वो दुआएं ही फलीभूत होती है। जो मांगने वाली दुआ होती वो कभी क्या होती है, फलीभूत होती है। आपके आगे कोई व्यक्ति आया और सिर्फ कहे हमको दुआ दो ना, आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो, तो उसको खुश करने के लिए तो उस समय हम सभी क्या कर देते हैं, कर देते ना। लेकिन जो दिल की दुआ है और जो दिल का आशीर्वाद है वो कैसे मिलेगा? दिल का पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं। प्राप्ति के बिना दुआएं कभी भी नहीं मिलती है। देखो कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, है? और ऐसी कोई होपलेस बीमारी होती है जो ठीक होने वाली नहीं होती है, सबने जवाब दे दिया होता है, अगर कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है, है? तो वो आपको ठीक कर देता है, तो सारी जिंदगी क्या करते हैं, उसको दुआ देते हैं, आपको नहीं भूलेंगे, आपको नहीं भूलेंगे, उसके प्रति दुआएं। माना जिससे जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति ऑटोमेटिक दिल से दुआ लाती है। जैसे हम सभी को बाबा के प्रति जो दुआएं निकलती है, बाबा के प्रति जो शुक्रिया निकलता है, हम सभी बाबा को बहुत क्या करते हैं, दिल से शुक्रिया देते हैं। देते नहीं देते, बाबा को रोज शुक्रिया देते, बाबा तेरा शुक्रिया, तूने हमको इस पुरानी दुनिया से, पतित दुनिया से, तमोप्रधान दुनिया से निकाल करके हमको अपना बना लिया, इतनी करोड़ों आत्माओं में से चुन करके मुझे अपना बनाया और अपना बच्चा बना लिया, आपकी में नजर मेरे ऊपर पड़ी है। और बाबा जो हम बच्चों को सर्व खजाने दे रहा है, तो हमारी क्या निकलती है, नेचुरल बाबा के प्रति क्या निकलती है, दुआएं ने, हाँ दुआएं उनको देनी नहीं पड़, नेचुरल निकले, बाबा थैंक्स, हाँ कोई फायदा होता है, बाबा थैंक्स, दिल से निकलता है। तो बाबा से तो निकलता है, ऐसे ही हमको सिर्फ बाबा की दुआएं तो काम नहीं करेंगी ना, क्योंकि हम सभी संसार में रहते हैं, परिवार में ये हमारा बाबा ने बहुत बड़ा हमको एक दैवी परिवार दिया है, तो इस परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए है, हमें दुआओं की जो आवश्यकता है उसमें सबके साथ की आवश्यकता है, सबकी दुआएं चाहिए, परिवार की चाहिए, लौकिक की चाहिए, अलौकिक की चाहिए, साथियों की चाहिए, छोटों की चाहिए, बड़ों की चाहिए, है? तो सबकी दुआएं हमारे लिए निकले, उसके लिए हम क्या करें? हमारे लिए सबकी दुआएं निकले, तो सबकी दुआएं प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात तो क्या करनी होती है? जो हम सबके दुआओं के पात्र बन जाए। बाबा की दुआएं कैसे मिलती हैं? हम बाबा जो कहते हैं उस अनुसार हम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? बाबा की दुआएं मिलती है। अगर नहीं करते हैं तो बाबा हमको कोई बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन समझाता तो है ना। जैसे आज की मुरली में बाबा ने समझाया, क्या समझाया? बाबा ने कहा जो बच्चे सेवा नहीं करते हैं तो उनको क्या कहेंगे? अवधूत कहेंगे। सेवा नहीं करते हैं तो उनको बाबा ने समझ दी है, और जो बच्चे सेवा करते हैं तो बाबा उनकी क्या करते हैं? वाह वाह करते हैं, वाह मेरे बच्चे इतनी सेवा करते हैं। तो जब बाबा की दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं का हम सभी क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। देखो, कोई भी सेवा का कार्य करके आते हैं और आकर के हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा से हमें क्या मिलता है? बाबा का आशीर्वाद, खुशी मिलती, जैसे ऐसे फील होता है कि बाबा मुझे जैसे शाबाशी दे रहा है, बच्चे तुमने बहुत अच्छी सेवा की, बच्चे तुमने ये किया, बच्चे तुमने ये किया। तो बाबा की दिल का आवाज हम सबको मिलता है। तो जब किया होता है तो मिलता है, और अगर नहीं करते हैं तो बाबा कोई हमको बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन वो नेचुरली क्या होता है? भारीपन होता है। जो श्रीमत पर चलेंगे वो हल्के रहेंगे, और जो मन मत पर चलेंगे तो क्या रहेंगे? भारी रहेंगे। तो मन मत पर चलने वाले को दुआएं मिलेंगी, हैं? दुआएं किसको मिलेंगी? जो श्री मत पर चलने वाले होते हैं, और श्री मत पर चलने वालों को दुआएं मिलती हैं, और श्री मत पर चलने वाले ही हल्के होकर चलते। देखो, श्री मत क्या है? बाबा की श्रीमत, हम बच्चों को एक एक श्रीमत मिलती है, एक एक श्रीमत बाबा मुरली के अंदर देता है। कई बच्चे पूछते हैं बाबा श्रीमत क्या देता है? हैं? आप जो बाबा मुरली के अंदर कहता है अगर हम उस अनुसार चलते रहते हैं तो यही श्रीमत है, और इस श्रीमत अनुसार चलते हैं तो हमें बाबा की दुआएं मिलती है। देखो, हमारी दादियों जो भी थी, उन दादियों ने अपनी जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया? देखो, हमारी मम्मा की महिमा हम सभी सुनते हैं। जब मम्मा का दिन आता है ना तो मम्मा की विशेषता सुनते हैं। तो मम्मा की विशेषता क्या सुनाते हैं? कि मम्मा हमेशा हाजी करने वाली थी, कभी मम्मा ने नाज ही नहीं किया, हमेशा क्या कहा? जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, है? तो जी बाबा करने वाले को क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी ना। दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जी जी जी, हाँ जी हाँ जी करते रहेंगे तो दुआएं मिलेंगी, और अगर नाजी करेंगे तो दुआएं मिलेंगी? तो दुआएं लेनी है तो हमें क्या करना है? हाँ जी। देखो, मम्मा हाँ जी का पार्ट था पक्का, और मम्मा का यही स्लोगन है कि हुकुम ही हुकुम चला रहा है। जो हुकुम मिला, जो बाबा ने आज्ञा दी है, और उस आज्ञा का पालन किया। देखो, आज्ञा सबसे पहले किसकी है? आज्ञा देने वाला कौन है? बाबा ने आज्ञा दी, और बाबा की आज्ञा को हम अगर पालन करते हैं तो हमें बाबा की दुआएं ऑटोमेटिक मिलती है। तब तो बाबा कहते हैं ना, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश सिकी लदे बच्चे, प्यारे बच्चे, नूरे बच्चे, ये शब्द बाबा क्यों देता है? ये बाबा की दुआएं हैं हमारे लिए। ये शब्द क्या है हमारे लिए? दुआएं, मेरे लक्की सितारे बच्चे हो, हाँ, तो ये सब बाबा के जो शब्द हैं ये हमारे लिए एक दुआएं हैं। और ये शब्द कब निकलते हैं? जब हम उस अनुसार कर्तव्य करते हैं तभी हमको वो शब्द सुनने को मिलते हैं। और जब वो शब्द हम सुनते हैं तो हमको कितना नशा चढ़ता है। बाबा एक बार कहता है लक्की सितारे हो तो कितनी खुशी होती है, हैं? बाबा ने कहा लक्की सितारे हैं, उम्मीदों के सितारे, तुम मेरे कुल के दीपक हो। बाबा ने ये कहा तो कितना नशा होता है। ये क्या है? ये शब्द क्या है? ये दुआएं हैं। तो बाबा ने हम सभी को क्या बनाया, हा? इस ब्राह्मण कुल का, ईश्वरीय कुल का कुल दीपक बनाया है। तो हम सभी ईश्वरीय कुल के कुल दीपक है। तो कुल दीपक का कर्तव्य क्या होता है? भाई कुल दीपक जो होता है, दीपक का कर्तव्य क्या होता है? वैसे भी दीपक के लिए कहते हैं वो क्या करता है, रोशनी देता है ना? तो हम सभी भी कुल दीपक क्या करेंगे, रोशनी देने वाले हैं। तो रोशनी देने वाले, अंधेरा करने वाले नहीं है। दीपक अंधेरा नहीं करता है, भले दीपक के नीचे अंधेरा होता है लेकिन वो देता तो सबको उजाला ही है। तो हम सभी बाबा के कुल दीपक हैं। और कुल दीपकों का कार्य क्या है? जो बाबा का कार्य है वो हम बच्चों का कार्य है। तो बाबा के कार्य के सहयोगी बनना, सहयोगी बनना अर्थात दुआएं लेना। तो दुआएं लेने के लिए हमें एक तो सहयोगी बनना पड़ेगा। जब तक हम सहयोगी नहीं बनेंगे तब तक हम दुआएं नहीं ले सकेंगे। और दूसरा, दुआएं लेने के लिए हमें बाबा के पास क्या करना पड़ेगा? जो बाबा ने हम सबको नियम दिए हैं, मर्यादाएं दी हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, जो हमारी दिनचर्या दी है, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमें बाबा की दुआएं मिलती हैं। वैसे भी देखो, जब आप सब भट्टी में आते हैं यहाँ पर, तो भट्टी में आकर के क्या करते हैं? भट्टी में आकर हम सभी क्या करते हैं? विशेष भट्टी की जो दिनचर्या मिलती है उस दिनचर्या अनुसार हम चलते हैं, उस अनुसार बाबा को याद करते, उस अनुसार ज्ञान सिमरन करते हैं, उस अनुसार अपने लाइफ में धारण करते हैं, तो स्वयं को भी खुशी होती है, साथ साथ देने वालों को भी खुशी होती है। जो ग्रुप आता है तो उसके लिए क्या, फलाना ग्रुप बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। तो क्या हुआ, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा किया, इसलिए आपके लिए क्या मिली, दुआएं मिली। तो दुआएं तो हमको हर पल मिलती है, कदम कदम पर हमको दुआएं मिलती हैं, और कदम कदम पर हमको दुआएं लेनी। ऐसे नहीं कि दुआएं स्पेशल दी जाती हैं, जो जो हम कर्म करते हैं प्रैक्टिकल में, हर कर्म के अंदर हमारे को दुआएं मिलती है। बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों की लाइफ इतनी सुंदर बना दी है कि अगर हम बाबा के अनुसार चलते हैं तो हमारे हर कदम, हर सेकंड हमें दुआएं मिलेगी। कोई हमको बद्दुआ दे नहीं सकता है। बद्दुआ तब आती है जब हम ईश्वरीय मर्यादाएं, नियमों के ऊपर नहीं चलते हैं, तो ऑटोमेटिक कोई देता नहीं है हमको, लेकिन ऑटोमेटिक ही वो हमारे जीवन में आ जाती है, भारीपन आ जाता है। देखो, भारीपन आना भी कई बार आप देखेंगे, जीवन बहुत अच्छा हल्का लगता है, लगता है नहीं लगता है, और कभी कभी जैसे कि भारीपन लगता है। तो भारीपन क्यों लगता है? तो कहते हैं कोई मुझे क्या कर रहा है, बद्दुआ दे रहा है, कोई मेरे प्रति अशुभ सोच रहा है ना? तो अशुभ क्यों सोचता है? कोई भी हमारे प्रति अगर अशुभ भी सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं? जरूर हमने कुछ ऐसा किया है तब हमारे प्रति किसी का सोच ऐसे चलता है। अगर हम मर्यादाओं अनुसार आज्ञाकारी बनकर श्री मत अनुसार अगर हम कर्तव्य करते चलते हैं तो कोई हमारे लिए व्यर्थ सोच नहीं सकता, और जब हमारे लिए व्यर्थ नहीं सोचेगा तो जरूर शुभ सोचेगा। जो भी हमारे साथी होंगे, स्नेही होंगे, सहयोगी होंगे, उनका ही हमारे प्रति सोच चलता है, तो उनका सोच हमारे प्रति कैसे चले? अगर हम उनके प्रति शुभ सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए शुभ सोचेंगे, और शुभ सोचेंगे तो क्या मिलेगी हमको? हम भी दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। कह तो देते भाई दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, लेकिन दुआएं देनी और लेनी कैसे है? किसी के प्रति अशुभ सोचना भी उसको क्या देना है? बद्दुआ देना है। किसी के प्रति शुभ सोचना ही दुआएं देना है। देखो बाबा हमेशा शिव बाबा के लिए क्या कहा जाता है? कल्याणकारी कहा जाता है। तो कल्याणकारी बाप है तो बाप हमेशा क्या करता है? कल्याणकारी ही सोचता है। चाहे अकल्याण करने वाले होते हैं उसके लिए भी बाबा हमेशा क्या सोचते हैं? कल्याण की सोचते हैं। जैसे बाबा कभी कहते हैं कोई शत्रु है तो उसको शत्रु नहीं समझो, उसको क्या समझो? मित्र समझो, वो हमारा मित्र है। अगर मित्र समझेंगे तो वो मित्र बनेगा, अगर शत्रु समझेंगे तो शत्रु बनेगा। अगर शत्रु समझ करके उसके साथ अगर हम चलते रहेंगे तो शत्रु हमारे लिए क्या सोचेगा? हमारे प्रति उसके सोच कौन से चलेंगे? श्रेष्ठ तो नहीं चलेंगे ना। हम किसको भी अपना शत्रु या दुश्मन मानते हैं, किसी के प्रति हमको होता है ये हमारा ऐसा करता है, तो उसके प्रति हमारे दिल से दुआएं नहीं निकलती है, व्यर्थ निकलता है। इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, यही चलता है। लेकिन बाबा ने हम सभी को अभी क्या सिखाया है? बाबा यही सिखाता है कि हमको हरेक आत्मा के प्रति शुभ सोचना, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। तो जब हम शुभ भावना और शुभ कामनाएं रखते हैं तो वो आत्मा की हमारे प्रति ऑटोमेटिक दुआएं निकलती है। अगर हम किसी के प्रति अशुभ सोचते हैं तो हमारे लिए उन आत्माओं के द्वारा हमको कभी भी दुआएं नहीं मिलेगी। तो अगर हम हर आत्मा के प्रति शुभ सोचना शुरू करें तो दुआओं का भंडार हमारे पास भरता जाएगा और हम अपने को बहुत हल्का फील करते रहेंगे। और जब तक हम अपने को हल्का नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा क्या है? उड़ नहीं सकती। कल भी सुनाया था ना कि भाई भट्टी के अंदर आप सबको क्या करना है, कौन सी चमकीली ड्रेस पहन करके जाना है। चमकीली ड्रेस है फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस। तो फरिश्ता कौन बनेगा? फरिश्ता बनने वाला दुआएं देगा और दुआएं लेगा। जो दुआएं लेगा वो ही उड़ेगा, अगर दुआएं नहीं लेगा तो वो उड़ सकता है? वो नहीं उड़ सकता है। तो अभी हम सबको इस समय अपने पास दुआओं का स्टॉक जमा करना है, और दुआओं का स्टॉक जमा करने के लिए हमें अब क्या करना है? तो उसके लिए दुआओं का स्टॉक जमा करने के लिए हमें अभी विशेष बाबा भी समय प्रति समय हम बच्चों को इशारा देते हैं कि बच्चे हर आत्मा के लिए प्रति अब शुभ सोचना शुरू करो, और जितना हम अपने अंदर शुभ विचार शुभ सोचते हैं उतना ही हम हल्के होते जाएंगे। अगर हमारे चिंतन वही व्यर्थ चलते हैं और अशुभ ही हम सोचते रहते हैं तो हम कितना भी उड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन उड़ नहीं सकेंगे। और अभी का जो समय है वो हमारा उड़ने का समय है, अभी चलने का समय पूरा हो गया। हाँ, क्योंकि वर्तमान समय चारों तरफ की हम परिस्थितियां देखते रहते हैं कि कैसे परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में हमको अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। आप सभी विशेष भट्टी में आए हैं, तो भट्टी में विशेष क्या करने के लिए आए? भट्टी करते हैं तो भट्टी में क्या करते हैं? देखो, भट्टी के अंदर कोई भी चीज डाली जाती है तो वो चीज क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है, है? सोने को प्योर करने के लिए भट्टी में डाला जाता है। तो आप सभी आत्मा को भी योग भट्टी में क्या बनना है? प्योर बनना है। और भट्टी में आए ही इसलिए, भट्टी हमारे लिए इसलिए ही रखी जाती है। देखो, समय प्रति समय भट्टियों के आयोजन क्यों किए जाते? इसीलिए, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे, मैं अब तुम बच्चों को संपूर्ण और संपन्न बना करके ले जाऊंगा। तो बाबा का लक्ष्य यही है, और बाबा का जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाबा हमें समय प्रति समय अनेक प्रकार की सावधानियां देते रहते हैं। मुरली के अंदर बाबा समझाता रहता है। तो विशेष जो हम भट्टी के अंदर आते हैं, तो भट्टी में हम विशेष अपनी उन्नति के लिए आते हैं, कि हमारी विशेष उन्नति हो और ऐसी हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो जाए, जो हमारी बैटरी फिर क्या करे, औरों को भी क्या करे, चार्ज करे। तो जब अपनी बैटरी चार्ज होगी तब हम दूसरों की बैटरी को चार्ज कर सकेंगे। अगर स्वयं की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो दूसरों की बैटरी को क्या चार्ज करेंगे? तो आप सभी यहाँ भट्टी में क्या करने आई हैं? अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए। तो बैटरी को फुल चार्ज करके जाना, ऐसे नहीं थोड़ा सा ही चार्ज कर लेंगे, नहीं, फुल चार्ज करके जाएंगे। तो जब फुल बैटरी चार्ज करके जाएंगे तो फुल पावर, फुल फोर्स से जहां जाएंगे वहां औरों की बैटरी को भी चार्ज कर सकेंगे। और जब औरों की बैटरी चार्ज होगी तो वो क्या करेंगे? मधुबन भट्टी से आए तो ऐसे अनुभव सुनाना कि भाई मधुबन में हमारी बैटरी ऐसी पावरफुल बनी, ऐसे अनुभव सुनाना जो औरों और आपके अनुभव सुन करके वो भी वही अनुभव करें। भले हम जा नहीं पाए लेकिन आपने उनको ऐसा अनुभव कराया जो उनको ये फील हो कि हम गए नहीं लेकिन हमको सब कुछ मिल गया। क्योंकि मिला होता है तो हम उस अनुसार सुना सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सुनाएंगे। तो इस बार इस भट्टी के अंदर आप अपना फुल फोर्स भर करके जाना, पूरी बैटरी को चार्ज करके जाना। और बैटरी जितनी चार्ज होगी उतनी वहां जाकर औरों की बैटरी को भी चार्ज करेंगे। बाबा कहता है ना, बच्चे मधुबन में बाबा के घर में आते हैं तो किस लिए आते हैं? बादल भरने के लिए आते हैं। और बादल भर कर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? बरसते हैं। गरजना नहीं लेकिन बरसना है। गरजने वाले बरसते नहीं है, जो भरे हुए बादल होते हैं ना वो क्या होते हैं? बरसते हैं। तो आप सभी यहाँ से क्या होके जाएंगे? बादल ऐसे भर कर जाना और सबके ऊपर जा करके वर्षा करेंगे, औरों को भी ऐसा अनुभव कराएंगे। तो जब अनुभव करेंगे तो क्या मिलेंगे? दुआएं मिलेंगी, है? तो दुआएं लेने के लिए भी अपने जीवन का अनुभव सुनाना है। जो हमने पाया है वो हमको औरों को भी बांटना है। बाबा कहता है ना, रूप बसंत बनो, तो रूप बसंत बनना है, सबको बांटना है। और बांटेंगे ही तभी हमारे कहते ना, धन दिए धन ना खुटे। कौन सा धन? ये अविनाशी ज्ञान धन, अनुभव का धन। हम जितना औरों को देंगे उतना हमारा ये बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो हमारे पास भी रहेगा, औरों को भी हम दे सकेंगे। आज मेरा गला ठीक नहीं है। ओम शांति।